ओम शांति। तो मुरली का समय हमारा योग में बीते, उसके लिए हम क्या करें? तो उसकी विधि यही है कि हम स्मृति स्वरूप होके बैठें कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं और स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है। तो अपने आप को पहले से ही मुरली से पहले नशा चढ़ाना है, तब जाके नींद भी नहीं आएगी और एकाग्रता भी बनी रहेगी। मुरली हमें साधारण नहीं लगेगी, नहीं तो रेगुलर हो गई इसलिए हमको साधारण लगती है। तो नशा कैसे चढ़ाएंगे? जैसे ही आपको एक घंटे पहले ही मुरली में जाना हो तो उसके पहले ही नशा चढ़ाना चालू कर दो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, स्वयं भगवान परम धाम से मुझे पढ़ाने आ रहा है। जिस भगवान की एक झलक पाने के लिए राजाओं ने अपने राजपाट छोड़ दिए, जंगलों में चले गए, वस्त्र तक त्याग दिए, तो वो भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आ रहा है। लोगों ने कितने जतन किए, कोई एक टांग पे खड़ा हो गया, कोई उल्टा लटक गया, जंगलों में चले गए, लेकिन उन्हें भगवान की एक झलक भी नसीब नहीं हुई। और हम सबको रोज भगवान एक घंटा मुरली पढ़ाते हैं, कितने वरदान देते हैं, कितनी शक्तियां देते हैं, कितनी समझ देते हैं। जो भी जीवन में आवश्यक चीजें हैं वो सब कुछ मिल रहा है। तो मुरली तो हम सुन ही लेते हैं, लेकिन बीच बीच में ये स्मृति बनी रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं और भगवान बोल रहे हैं और मैं आत्मा सुन रही हूं। मैं आत्मा राजा मस्तक सिंहासन पे बैठ के ऊंचे से ऊंचे भगवान की मुरली सुन रहा हूं। एक महावाक्य भी मैंने मिस किया तो महावाक्य मिस नहीं किया, लेकिन वर्तमान और भविष्य कमाई में कमी की। तो इस भाव से अगर हम मुरली सुनेंगे तो हमारा योगयुक्त समय बीतेगा। और सुनाने वाले को नहीं देखना है, लेकिन ये महावाक्य किसके हैं ये चेक करना है कि ऊंचे से ऊंचे भगवान के महावाक्य है। मैं आत्मा भ्रुकुटी रूपी कुटिया में बैठ के ऊंचे से ऊंचे भगवान की मुरली सुन रही हूं। तो नशा चढ़ाना, जितना अच्छा नशा चढ़ा के बैठेंगे उतना ही धारण होगा। और संकल्प करना है कि आज की मुरली में कोई न कोई बात को मुझे धारण करना ही है। तो लक्ष्य लेके बैठना है तो योग भी हो जाएगा और मुरली भी याद रहेगी। तो जो मुख्य मुख्य पॉइंट है उनको बार बार हम रिपीट करें तो मुरली याद रहेगी। तो आज की मुरली में क्या था? सने के सागर बाप किसको देख रहे हैं? सनई आत्माओं को देख रहे हैं। आज की मुरली का जो हेडिंग था वो क्या था? प्योरिटी की पर्सनैलिटी, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी की रूहानी स्मृति स्वरूप रहो, रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप रहो, प्यूरिटी की पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप हमें रहना है। तो आज बाबा हमको देख रहे थे प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाली आत्माओं को। तो बाबा क्या देख रहे थे कि वैसे दिखने में तो सभी लोग साधारण ही हैं, लेकिन चेहरे और चलन से क्या दिख रहा था? हर एक बच्चे की पर्सनैलिटी की अनुभूति हर एक को हो रही थी। जिसमें जितनी ज्यादा प्योरिटी है उतनी ज्यादा अनुभूति हर एक को होती है। एक दो को हम देखते हैं तो मालूम पड़ता ना। तो ये पर्सनैलिटी सारे क्लब में ऐसी पर्सनैलिटी किसी की भी नहीं है जो हमारी है। दुनिया के अंदर जो पर्सनैलिटी होती है वो कौन सी होती है? शरीर की पर्सनैलिटी होती है, कोई विशेषता की पर्सनैलिटी होती है, या पद की पर्सनैलिटी होती है। लेकिन हम सब की पर्सनैलिटी कौन सी है? प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी। तो बाबा कहते हैं कि इस पर्सनैलिटी के नशे में रहना है। कि बाबा ने कहा कि चक्कर लगाओ पूरे क्लब में सत्युग से लेके अंत तक, आप जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई है? कोई नहीं है ना। दुनिया वालों की पर्सनैलिटी होती भी है तो हद की होती है। किसी का शरीर कितना भी मजबूत हो या कैसा भी आकर्षक हो, आज नहीं तो कल जाएगा ही। और हमारा तो कितना लंबा चलता है। ऐसे ही पद भी है तो आज पद पे है कल नीचे है। ऐसे ही हर चीज का मतलब विनाशी वो है, कम टाइम की है। लेकिन हमारी आधा क्लब तक, आधा क्लब क्या पूरे क्लब ही कोई छीन नहीं सकता है। पूरे क्लब प्योरिटी की पर्सनैलिटी हमारी काम आती है। तो बाबा ने बताया कि आपकी अनादिकाल की प्योरिटी के प्रोफेशनलिटी क्या बताई कि अनादिकाल में आप बाबा के एकदम समीप थे। भले ही आत्मा सभी ज्योति है चमकती हुई, लेकिन आपकी जो चमक है वो सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। तो चले जाओ परम धाम में, एकदम बाबा के पास बैठ जाओ बाप समान स्थिति के अंदर, कि मेरी चमक सर्व आत्माओं से बहुत ज्यादा है। पहुंच गए सभी या रास्ते में है? पहुंच गए ना, तो अनुभव करो कि मैं बाप समान हूं। जैसे बाबा निराकारी निर्विकारी निरंकारी है, ऐसे मैं आत्मा भी निराकारी निर्विकारी निरंकारी हूं, बाबा के साथ हूं, उसके समीप हूं, उसके समान हूं, उससे कंबाइंड हो। तो ये अनादिकाल की प्योरिटी की पर्सनैलिटी। फिर बाबा ने कहा अनादिकाल से आ जाओ आदिकाल में, तो आदिकाल में आ गए या रास्ते में हो? पूछ रहे हैं बाबा, पहुंच गए? कितना टाइम लगता है? सेकंड से भी कम टाइम। तो आदिकाल की पर्सनैलिटी कैसी है? देव रूप में कितनी सुंदर है, कितने सजे सजाए हो। और तन की भी पर्सनैलिटी है, मन की भी पर्सनैलिटी है, धन की भी पर्सनैलिटी है, और संबंध की भी पर्सनैलिटी है। और उसका प्रैक्टिकल प्रूफ क्या है कि आज देवताएं रहे नहीं है, लेकिन मन से इतने पर्सनैलिटी वाले बने थे कि आज तक भी लोग दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसे ही तन की भी पर्सनैलिटी कितनी है कि आज तक देवी देवताओं को कभी ऐसा नहीं देखा हॉस्पिटल में भर्ती और बोतल चढ़ रही हो, कभी देखा? कभी बीमारी नहीं होते हैं। तो इतने सुंदर भी और बीमार भी नहीं होते। आज कोई कितना भी सुंदर हो लेकिन अंदर से जाओ तो दुनिया भर के रोग लगे हुए हैं, लेकिन वो एकदम निरोगी थे, तन भी ठीक, इतना शोभनिक। और वो शोभनिक होने के कारण, प्योर होने के कारण प्रकृति भी सत्व प्रदान थी। आसपास की प्रकृति जो थी, मौसम जो था, साधन जो थे, वो सब हर चीज परफेक्ट थी। तो आदिकाल की पर्सनैलिटी कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है। तन भी एकदम तंदुरुस्त, मन भी एकदम फिट, धन धान्य से संपन्न, और संबंध भी कितने मधुर। तो चारों प्रकार की पर्सनैलिटी वहां भी होती है। वो किस आधार पे होती है? अभी की प्योरिटी के कारण से। आधा कल्प तक हम ये चारों प्रकार का सुख भोगते हैं। और चेहरे पे भी कितनी रौनक आती है, चेहरे में भी सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब कुछ नजर आता ना। आज कोई धनवान भी हो तो उसके चेहरे पे 12 बजी रहती है, सही है ना? जो ज्यादा धनवान है वो उतना ही परेशान है, क्योंकि गिनती करता रहता है वो। और हम सब भगवान को याद करते रहते हैं और वो धन को गिनती करते हैं, तो कहते हैं ना लक्ष्मी तो चंचल होती है। तो धन को जो ज्यादा याद करेगा तो उसका मन भी उतना ही चंचल हो जाएगा, और जो बाबा को याद करेगा उसका मन एकदम शांत स्थिर। तो वहां पे धन धान्य भी खूब होगा, लेकिन चेहरे के ऊपर भी वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो शक्ति स्वरूप, वो सब कुछ नजर आएगा। फिर आ जाओ मध्य काल में। मध्य काल के अंदर भी हमारी पूजा कितनी विधि पूर्वक हो रही है। ऐसी कोई राजनेता कोई धर्म नेता की होती है? स्टेचू बना देते हैं, कौवे बीटे करते रहते हैं, है कि नहीं? लेकिन हमारी पूजा कितनी विधिवत होती है। तो मध्य काल के अंदर भी हम कितने श्रेष्ठ है, और कितना गायन होता है हमारा। हमारी मूर्तियों के आगे कितनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, आप सोचो। अभी हम देखते हैं तो सोचते हैं कि ये क्या है कि रात भर लाइन लगे हुए हैं के लोग, तो हमको आश्चर्य होता ना। लेकिन आपकी प्योरिटी के कारण से आज तक इतनी लाइनें लग रही है आपकी मूर्तियों के दर्शन के लिए। तो जब चैतन्य में आप होंगे तो क्या होगा? तो कितना गायन होता है और कितना विधिवत पूजन होता है, ऐसा किसी का भी नहीं होता है। फिर आ जाओ अंत के अंदर, अंत काल में ब्राह्मण। तो ब्राह्मण मतलब ईश्वरीय संतान, हर कार्य में सफलता के अधिकारी। इसलिए आज तक भी कोई भी काम करा रहे हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं, चाहे शादी हो, चाहे किसी का मुहूर्त निकालना हो, मकान का उद्घाटन कराना हो, कुछ भी कराना हो, तो ब्राह्मणों को सबसे आगे, जबकि वो ब्राह्मण ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन आपके नाम से ही आज तक भी उनकी काम चल रहा है, उनके परिवार पल रहे हैं ऑटोमेटिकली। तो आपका नाम भी कितना ऊंचा है और काम भी कितना ऊंचा रहा, जिसके कारण से नामधारियों की भी मौज है, आज भी पांचों उंगलियां घी में है उनकी, सही है ना। तो ब्राह्मण अंतकाल का भी प्योरिटी के कारण से ही है, भगवान के बच्चे बने उसका आधार भी क्या है, प्योरिटी है। भगवान मिले हैं और उनको अपना बना के रख रहे हैं, उनसे हर क्षण मिलन मना रहे हैं, उसका आधार भी क्या है, पवित्रता ही है। तो बाबा ने कहा कि अनादि आदि मध्य और अंत कितना श्रेष्ठ है ना श्रेष्ठ। और फिर बाबा ने बोला कि जो दुनिया में जो नामी ग्रामी है उनका नाम कहां पे होता है, कोई बुक में होता है, और आप सब का नाम कहां है, शास्त्रों के अंदर। आपकी तो कहानियां हैं सारी शास्त्रों के अंदर, जो जो भी यहां पे कुछ हो रहा है वही सब शास्त्रों में गई, अच्छी हुई तो भी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई तो भी, वो भी उसको भी लोग इतनी भावना से मतलब करते हैं, याद करते हैं। तो शास्त्रों को भी कितना सम्मान देते हैं, उस बुक को इतना सम्मान नहीं देते होंगे, लेकिन शास्त्रों को कितना विधिवत पूजन होता है, उनका पूरा परिक्रमा भी करते हैं, तो हर प्रकार से शास्त्रों का भी मान है, तो हमारा नाम वहां आता है। और फिर बाबा ने कहा ये प्योरिटी बनी रहे उसके लिए क्या करना है, सेकंड में ऐश्वर्य जीपन का अभ्यास, सही है ना। तो अगर सेकंड में ऐश्वर्य जीपन का अभ्यास होगा तो क्या होगा, नंबर आगे भी ले लेंगे, और जो हम डेट पूछते रहते हैं ना, विनाश कब होगा विनाश कब होगा, तो आपको वाइब्रेशन हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा ऐश्वर्य जीपन से कि कब विनाश होने वाला है। ओम शांति।